ॐ नमो भगवते वासुदेवाय यया हि विद्वान् अभिमूयते यत् तत्को विचष्टे गतिमात्मनो यथा तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणाखिल लोकसाक्षिणे यया हि विद्वानपि मूयते यत् तत्को विचश्चे गतिमात्मनो यथा तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणाखिल लोकसाक्षिणे यया हि विद्वान् अपि मूयते यत् तत्को विचश्चे गतिमात्मनो यथा तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणाखिल लोकसाक्षिणे धन्यवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमादेश भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की शब्दार्थ यया जिस ऐश्वर्य से ही निसंदेह विद्वान अपि विद्वान भी मोह्यते मोहित हो जाता है यथा आत्मनियंत्रित तत् वह का कौन विचश्चे ढूंढ सकता है गतिम उन्नति आत्मना अपनी यथा भली भांति तस्मै उसको नमा सादा नमस्कार करता हूँ ते तुमको जगत ईश्वराया ब्रह्मांड के स्वामी को वै निसंदेह नारायणाय नारायण को अखिल लोक साक्षिणे समस्त सृष्टि के साक्षी। अनुवाद: भौतिक ऐश्वर्य इतना मोहक है कि विद्वान तथा आत्मसंयमी व्यक्ति भी आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य को ढूंढना भूल जाता है, लेकिन भगवान नारायण जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं अपनी इच्छा अनुसार प्रत्येक वस्तु को देख सकते हैं, अतएव मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। कृपया एक बार दोहराएं: भौतिक ऐश्वर्य इतना मोहक है कि विद्वान तथा आत्मसंयमी व्यक्ति भी आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य को ढूंढना भूल जाता है, लेकिन भगवान नारायण जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं अपनी इच्छा अनुसार प्रत्येक वस्तु को देख सकते हैं, अतएव मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। इस श्लोक कौन बोल रहा है? नहीं, प्रहलाद महाराज। अभी बलि महाराज को बंदी बनाया हुआ है और प्रहलाद महाराज वहाँ प्रकट हुए हैं। पिछला उन्हें श्लोक मिला, ये दूसरा उनके द्वारा बोला गया श्लोक है। तात्पर्य: को विचश्चे गतिमात्मनो यथा शब्द सूचित करते हैं कि जब मनुष्य भौतिक ऐश्वर्य का स्वामी होने की झूठी प्रतिष्ठा से फूल जाता है तो वह आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य की निश्चित रूप से उपेक्षा करता है। आधुनिक जगत की ऐसी ही स्थिति है। भौतिक ऐश्वर्य में तथा कथित वैज्ञानिक विकास के कारण लोगों ने आत्म साक्षात्कार के मार्ग को पूरी तरह से त्याग दिया है। व्यवहारिक दृष्टि से कोई भी व्यक्ति ईश्वर ईश्वर के साथ अपने संबंध या वे किस तरह कर्म करे, इन सब के विषय में रुचि नहीं रखता। आधुनिक व्यक्तियों ने ऐसे प्रश्नों को सर्वथा भुला दिया है, क्योंकि वे भौतिक संपत्ति के पीछे पागल हुए रहते हैं। यदि इस प्रकार की सभ्यता जारी रही तो वह समय शीघ्र ही आएगा जब भगवान सारा भौतिक ऐश्वर्य छीन लेंगे, तब लोगों की आंखें खुलेंगी। इंग्लिश में शिला प्रभुपाद लिखते हैं, देन पीपल विल कम टू देयर सेंसेस। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और शुरुआत करने से पहले मैं आप सबके आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि इस विषय पर मैं कुछ बोल सकूँ। जब मैं इस श्लोक में प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे लगा कि मैं फर्स्ट टाइम इस प्रसंग पे बोल रहा हूँ, तो मैं उन चीज़ों को भी टच करना चाहूँगा जो मुझे बहुत प्रेरित करती हैं इस प्रसंग से। तो मैंने 8 लेसन्स लिखे हैं इस बलि महाराज के प्रसंग से, इंक्लूडिंग आज के श्लोक पर जिस पर मैं चर्चा करूँगा। ये ब्रीफ में है, इसको मैं एंड में रिव्यू करूँगा। पहला चीज़ जिसको मैं चर्चा करना चाहूँगा, जैसे कि आज के श्लोक में आया है कि भौतिक ऐश्वर्य इतना मोहित करने वाला है कि एक जो शिक्षित व्यक्ति है या आत्मसंयमित व्यक्ति है उसको भी वो आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य से भटका सकता है। तो जो मटेरियल ऑपुलेंस है इसको इतना डेंजरस क्यों बताया गया है? शिला प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के अगर हम किसी भी प्रसंग को पढ़ें, कहीं किसी ना किसी रूप से जो भौतिक ऐश्वर्य का प्रसंग है ये निश्चित रूप से आता ही है। और इस प्रसंग में भी विशेषकर शिला प्रभुपाद बलि महाराज के प्रसंग में लिखते हैं, और यही प्रसंग 5वें स्कंद में भी आता है जहाँ पर वर्णन किया है जो नीचे के लोक हैं उनकी डिस्क्रिप्शन में। जब सूतल लोक का डिस्क्रिप्शन आता है तो वहाँ पर भी जो बलि महाराज के संदर्भ में प्रसंग आता है उसमें भी ये बताया गया है कि किस प्रकार से वामन देव ने बलि महाराज पे दया वर्ष करने के लिए जो भौतिक ऐश्वर्य था उनसे छीन लिया था। तो भौतिक ऑपुलेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक ऐश्वर्य, एक होता है आध्यात्मिक ऐश्वर्य। जो भौतिक ऐश्वर्य है किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है अपने कर्मों के फल से, परंतु जो आध्यात्मिक ऐश्वर्य है वो प्राप्त होता है भगवान के आशीर्वाद से। और भौतिक ऐश्वर्य बताते हैं, जैसे कि श्लोक में बताया है कि किस प्रकार से बहुत खतरनाक होता है। और अगर इसका उल्टी साइड भी देखें, क्या ऐसा है कि जिस व्यक्ति के पास भौतिक ऐश्वर्य नहीं है वो आत्म साक्षात्कार में रुचि रखेगा? श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में प्रसंग आता है कुंती महारानी का, जिसमें वो अपनी प्रार्थनाओं में कहती हैं कि किस प्रकार से अकिंचन गोचरा, कि भगवान किनके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? अकिंचन द्वारा। अकिंचन का क्या अर्थ होता है? जिसके पास कोई भी अकिंचन, अगर अगर उसके पास कोई भी भौतिक ऐश्वर्य नहीं है, पूर्ण रूप से मटेरियली इम्पॉवरिश्ड। तो इसका उल्टा लें, अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो क्या वो भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत ललायत होगा? एक तरफ है किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा ऑपुलेंस है जो बताया गया है आत्म साक्षात्कार पद से भटका सकता है, और दूसरी तरफ किसी के पास बिल्कुल भिखारी है, बहुत ही गरीब है, तो क्या वो भगवान आत्म साक्षात्कार के मार्ग में रुचि रखेगा? तो फिर इसका क्या अर्थ हो? शिला प्रभुपाद बताते हैं कि एक बार वो हावड़ा स्टेशन पर थे और उन्होंने देखा एक बहुत ही गरीब व्यक्ति अपने एक बोरे के अंदर जली हुई लकड़ियां लेकर और बहुत ही तुच्छ सामग्री लेकर जा रहा था। और प्रभुपाद कहते हैं उस व्यक्ति को भी लग रहा था कि मेरे पास कुछ है, हालांकि उसके बोरे में सिर्फ जली हुई लकड़ियां थी, फिर भी उसको लग रहा था कि मैं किसी चीज़ को पोजेस करता हूँ, ये मेरी सामग्री है। तो वहाँ पर शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, पहले इसका इस अकिंचन गोचर के तात्पर्य में लिखते हैं, ये मानसिकता होना कि ये मेरा है, मैं और मेरा की जो मानसिकता है, ये मानसिकता अपने आप में आत्म साक्षात्कार के पथ पर बाधा डालती है। किस प्रकार से? क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि मेरी सुरक्षा का जो आश्रय है, मैं भौतिक ऐश्वर्य का आश्रय लेकर ये मुझे सुरक्षा प्रदान कर सकता है, जबकि ये सत्य नहीं है। सुरक्षा सिर्फ भगवान कृष्ण ही प्रदान कर सकते हैं। परंतु अगर कोई इस प्रकार के कंसेप्शन में रहता है कि ये भौतिक ऐश्वर्य एकमात्र ऐसी चीज़ है जो मुझे सुरक्षा प्रदान करेगी, इस चीज़ को खंडन किया गया है। और श्रील रूप गोस्वामी आप भक्ति रत्ना श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं कि एक भक्त की स्थिति इतनी सुपर एक्सीलेंट होती है कि वो किसी भी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा नहीं करता। ऐसा कैसे होता है? ये भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, परम दृष्टा निवर्तते। उसको आध्यात्मिक उन्नति का जो सबसे हायर टेस्ट है, उसको प्राप्त करने के माध्यम से वो जो भौतिक ऐश्वर्य है उसकी तरफ उसकी किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रहती। और यहीं पर प्रभुपाद तुलना करते हैं एक भक्त की और योगी और ज्ञानी की। योगी और ज्ञानी निजी रूप से भौतिक ऐश्वर्य त्याग कर एक विधि का पालन करने का प्रयास करते हैं, परंतु श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसा अधिकतर केसेस में बहुत सस्टेनेबल नहीं रहता, क्योंकि जब तक हायर टेस्ट उपलब्ध नहीं होगा तब तक भौतिक ऐश्वर्य के प्रति जो आसक्ति है या मोह है वो जाता नहीं है। क्योंकि जीव की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि वो किसी ना किसी चीज़ पर आश्रित रहेगा, या तो भगवान पर या फिर अपने द्वारा बनाए गए कुछ अरेंजमेंट्स पर। और श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं महाराज प्रियव्रत का उदाहरण आता है कि किस प्रकार से वो आध्यात्मिक मार्ग में इतने उन्नत थे कि वो तुरंत उनका किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य का की तरफ कोई भी रुझाव नहीं था। भौतिक ऐश्वर्य भी कई प्रकार के होते हैं, इस पृथ्वी के ऐश्वर्य, स्वर्गलोक के ऐश्वर्य और नीचे के लोक के ऐश्वर्य। और अगर कोई भक्ति के मार्ग में है, एक भक्त है, शुद्ध भक्त है, उसका किसी भी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य की तरफ कोई रुझान नहीं होता। भौतिक ऐश्वर्य कहते किसको हैं? What do you mean by material opulence? कोई बताना चाहेगा? भौतिक ऐश्वर्य हम अक्सर सुनते भी हैं और उनको बताते भी हैं। भौतिक ऐश्वर्य, यस प्रभु जी, ठीक है, बट भौतिक ऐश्वर्य, ऑपुलेंस, मटेरियल ऑपुलेंस, व्हाट कम्स इन दैट ऑपुलेंस? हाई बर्थ, यस, हाँ, ऐश्वर्य मीन्स ऑपुलेंस, व्हाट कम्स इन दैट ऐश्वर्य? वेल्थ, ब्यूटी, सौंदर्य और पावर। हाँ, जो छह प्रकार के ऐश्वर्य हम पढ़ते हैं वो भी इसमें आते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु, जैसा कि चैतन्य शिक्षाष्टकम में बोलते हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरम कविताम व जगदीश काम है, तो ये धन जन सुंदरी ये भी इस भौतिक ऐश्वर्य के अंतर्गत आते हैं। यस प्रभु जी, और कुंती महारानी भी ये चार चीज़ों का उल्लेख करती हैं। तो नारद पंचरत्र के अंदर बताया गया है कि भक्ति की तुलना की गई है एक क्वीन से, एक रानी से। बताया कि जहाँ पर भी रानी जाती है उनके साथ जो दासियाँ हैं वो स्वतः उनके साथ चलती हैं। उसी प्रकार से जो भक्ति का पथ भी है वो एक रानी के समान है। और जो दासियाँ हैं वो कौन कौन हैं? भौतिक ऐश्वर्य, मुक्ति और मिस्टिक पावर्स। तो जहाँ पर भी शुद्ध भक्ति होगी वहाँ पर ये तीन चीज़ें स्वतः प्रकट होती ही होती हैं। और ध्रुव महाराज के प्रसंग में हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो भौतिक ऐश्वर्य के तलाश में तपस्या करने गए, भगवान को प्राप्त करने के लिए गए, परंतु आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति होने के बाद उनकी भौतिक ऐश्वर्य को खुद उसको भोगने की से पूर्ण रूप से उनको वैराग्य आ गया। और उन्होंने कहा कि मैं एक टूटे कांच को तलाश कर रहा था और मुझे हीरा प्राप्त हुआ। तो भक्ति में उन्नति का ये एक लक्षण है कि भक्त को भौतिक ऐश्वर्य के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है। और इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव जो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भौतिक ऐश्वर्य से किसी को आसक्त नहीं होना चाहिए, परंतु इसको कृष्ण भावनामृत में स्वीकार किया जा सकता है। किसके लिए? इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। और इसके कई उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से सनातन गोस्वामी, उन्होंने कौन सा मंदिर निर्माण किया वृंदावन में? राधा मदन मोहन का मंदिर। और ऐसा नहीं कि ये हमारे धर्म में, अगर आप मुस्लिम्स उसके में भी जाएंगे, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ओरिएंटल सिविलाइजेशन में पहले के ज़माने में जो मुस्लिम्स होते थे, अगर उनके पास थोड़ा भी धन आता था, श्री राधा राधिका रमन जी की, कृष्ण बलराम की, गौनिता की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, उनके पास थोड़ा भी धन आता था तो पहले वे बहुत बड़ी बड़ी मॉस्क क्रिएट करते थे। भक्ति वैभव में पीपीटी बनाई थी, उसमें भी यही टॉपिक था। वैसे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैष्णव धर्म में ऐसा है, इवन जो मुस्लिम्स हैं वो भी इस प्रकार की मॉस्क जो मस्जिद हैं ये क्रिएट करते हैं। तो धन का सही उपयोग क्या है? भगवत दर्शन जो सिद्धांत है, भगवान की सेवा के लिए उपयोग करना। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये जो मंदिर है ये किसकी देन है? मेरे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की देन है। क्योंकि इससे पहले जो रूप गोस्वामी द्वारा प्रणाली थी, वृंदावन में जाकर एक वृक्ष के नीचे से दूसरे वृक्ष के नीचे रहना, इतनी भारी मात्रा में जो वैराग्य का प्रदर्शन करना, परंतु मेरे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की ये अद्भुत देन है कि उन्होंने ये इतने ऐश्वर्यवान मंदिरों का निर्माण किया कि जिससे लोग आकर्षित हो सके कृष्ण भावनामृत में। परंतु जैसे कि श्लोक में आया है, कोई कह सकता है युक्त वैराग्य, हम अक्सर इस पे सुनते भी हैं कि ऐश्वर्य को किस में इस्तेमाल करना? भगवान की सेवा में। परंतु जो आज का श्लोक है, आज का जो शब्द आया है श्लोक के, विद्वान अपि, और ये विद्वान अपि, अगर आप इस सिर्फ फ्रेज को सुने, भागवतम में अक्सर ये फ्रेज भागवतम में अक्सर इस आज के श्लोक में ये फ्रेज है विद्वान अपि, अभी हमने शब्दार्थ भी पढ़ा, तो जो विद्वान अपि जो फ्रेज है वो भागवतम में कई सारे श्लोकों में आया है। तो इसको कैसे आप कोई और श्लोक दोहरा सकते हैं जिसमें विद्वान अपि बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है? विद्वान अपि न कर्षति, नौवें स्कंद में ययाति महाराज इस श्लोक बोलते हैं, बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अकेले में किनके साथ नहीं बैठना चाहिए? माता, पुत्री और सिस्टर, बहन के साथ अकेले में बैठना वर्जित किया गया है। क्यों? क्योंकि जो इंद्रियां हैं इतनी बलवान है कि ऑर्डिनरीली ये बहुत ही पवित्र संबंध है, इनके साथ यूजली इस प्रकार का भाव नहीं आता, परंतु इंद्रियां इतनी बलवान है कि अकेले में अगर इनके साथ संग करते हैं तो भी इच्छा आ सकती है। कोई कह सकता है ये इच्छा तो एक बिल्कुल थर्ड क्लास व्यक्ति की आएगी या जो सभ्य नहीं है, परंतु नहीं। आगे श्लोक में क्या कह रहे हैं? विद्वान अपि, जो सभी शास्त्रों को जानता है, ऐसे व्यक्ति के साथ भी ये हो सकता है। और छठे स्कंद में हम देखते हैं अजामिल के साथ, अजामिल श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि अजामिल जब वो दृश्य देखकर आकर्षित हो रहा था तो उसकी बुद्धि उसको बार बार कह रही थी कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ। उसके पास इतना इतना ट्रेनिंग था वैदिक ज्ञान का, वैदिक सभ्यता का, कि जब वो उस विषय की तरफ आकर्षित हो रहा था उसका उसकी जो बुद्धि है उसको मना कर रही थी, परंतु इंद्रियां इतनी बलवान, मन इतना बलवान था कि फिर भी उसको उस तरफ वो खींच कर ले गए। तो उसी प्रकार से जो युक्त वैराग्य है, हालांकि हर भौतिक धन को सुविधा को भक्त लोग स्वीकार करते हैं भगवान की सेवा में, परंतु युक्त वैराग्य सिद्धांत को अप्लाई करने के लिए भी एक आचार्य का या एक स्पिरिचुअल टीचर का, एक अनुभवी स्पिरिचुअल टीचर का मार्गदर्शन होना बहुत आवश्यक है। यही प्रसंग आता है कश्यप मुनि के, उसमें भी कश्यप मुनि भी विद्वान अपि बताते हैं कि वो लर्निड स्कॉलर थे, परंतु फिर भी वो दिति के जो आर्टिफिशियल बिहेवियर है उससे वो कैप्टिवेट हो गए थे। तो जो ये एक भौतिक ऐश्वर्य के ऊपर जो अगला प्रिंसिपल है, जो अगला प्रिंसिपल है, तो इससे किस प्रकार से प्राप्त कर सकते, इसको किस प्रकार से ओवरकम कर सकते हैं। जो वैदिक सभ्यता है वो सिखाती है दूसरा प्रिंसिपल, जो जो टीचिंग मैं बलि महाराज के उससे इस प्रसंग से ले सका, वो है सेटिस्फैक्शन का, संतुष्टता। जब वामन देव बलि महाराज से 3 पग भूमि उन्होंने मांगी, बलि महाराज ने कहा कि मैं आपको अन्य बहुत सारी चीजें दान में दे सकता हूँ, कि आपका जो प्रपोजल है बहुत ही इंटेलिजेंट प्रपोजल नहीं है, कि मेरे पास दान मांगने वाला व्यक्ति जीवन में किसी के पास दोबारा दान मांगने के लिए नहीं जाता, मैं इतना प्रोवाइड करता हूँ, ये बलि महाराज ने कहा। तो वामन देव ने उनको क्या उत्तर दिया कि जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है उसको पूरे सृष्टि का ऐश्वर्य भी अगर दे दिया जाए वो तब भी खुश नहीं रहेगा। उन्होंने कहा, और उन्होंने श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, एक ब्रह्मचारी और एक सन्यासी के लिए आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके पास ऐसा अवसर था कि वो कुछ भी मांग सकते थे, परंतु फिर भी उन्होंने वही चीजें मांगी जितनी उनको आवश्यकता थी, तो संतुष्टता। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य ये है जीवन को लोगों को ये शिक्षा देना, ये शैली सिखाना कि किस प्रकार से सादा जीवन और उच्च विचार की सेटिस्फेक्शन बिना अत्यधिक एंडेवर डाले, जो ऑटोमेटिकली मेटेरियली हमें प्राप्त हो रहा है उसमें सेटिस्फाई रहे। चलो मैं एक आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, हम अक्सर इस फ्रेज को सुनते हैं, हाई लिविंग और हाई थिंकिंग क्या एक बेटर प्रपोजल नहीं है? अगर दोनों चीजें हैं, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, तो ऊंचा जीवन और उच्च विचार क्या ये एक बेटर प्रपोजल नहीं हो सकता? वैदिक सभ्यता में सादा जीवन उच्च विचार पे क्यों इतना बल दिया गया? यस प्रभु, ठीक है, मटेरियल और ठीक है, अगर इसको प्राप्त करना बहुत इसमें मेहनत लगती है निश्चित रूप से, तो इसमें दिक्कत क्या है, हमें मेहनत करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि जितना आपका हाई लिविंग होगा उतना समय किस में जाएगा, हाई मेंटेनेंस में, और अगर समय उसकी मेंटेनेंस में जाएगा तो आत्म साक्षात्कार के लिए जो समय है बहुत कम बचेगा। तो इसलिए सारा जीवन उच्च विचार सेटिस्फैक्शन, पूरी की पूरी वैदिक सभ्यता इस वर्च्यू को बहुत ही इस पे आधारित है कि जितनी भी आपकी डेस्टिनी द्वारा आपको प्राप्त किया जाए बिना अत्यधिक प्रयास किए उसमें संतुष्ट रहना, परंतु आध्यात्मिक जीवन के लिए ललायित रहना, इसको इसको पालन करना। और इसका एक एंगल और भी है कि वैदिक शिक्षा हमें बताती है भौतिक इंद्रियों के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है वो असली सुख नहीं है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, वन हैज टू परसीव हैप्पीनेस बाय सुपर सेंसेस, कि आप भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, आप सुपर इंद्रिय तृप्ति कीजिए। सुपर इंद्र तृप्ति क्या है? आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति। वो कैसे हो सकती है? सर्वपादी विनिर्मुक्ता तत्परेना निर्मलम ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। जब हम आध्यात्मिक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो सेटिस्फैक्शन का एक प्रिंसिपल है। भगवत गीता में जो सेटिस्फैक्शन, तीन प्रकार की तपस्या बताई गई हैं, शरीर की, मन की, वाणी की। जो सेटिस्फैक्शन है इसको भी एक तपस्या बताया गया है। किसकी? सेटिस्फैक्शन मन की तपस्या है। इसका मतलब क्या है? इट हैज नॉट कम अंडर द बॉडी सेटिस्फैक्शन, अंडर द ऑस्टेरिटी ऑफ अ बॉडी। ये मन से सेटिस्फाई रहना कि मेरे को जितना भी प्राप्त है, हो रहा है डेस्टिनी के माध्यम, जिस भी पोजीशन में, जिस भी स्थिति में मैं हूँ वर्तमान में, मैं उसमें संतुष्ट रहूँ। परंतु अब इसको बहुत बार मिसअंडरस्टूड किया जाता है कि आध्यात्मिकवादी लोग एस्केपिस्ट हैं, कि वो ज़्यादा इसमें पैशनेट नहीं होते किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, और बस बहुत कंफर्टेबल लिविंग जीना चाहते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि एक भक्त, उसको ये ज्ञान होता है कि असली आनंद अपनी आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति के द्वारा किया जा सकता है, और इसलिए वो उस भगवान की सेवा में ललाहित रहता है। और देखते हैं वामन देव ने भी सेटिस्फैक्शन के बारे में बोला, और वामन देव के सामने शुक्राचार्य भी थे। वो वामन देव दोनों को बोल रहे थे, पूरी सभा में उन्होंने ये शब्द कहे, और सामने शुक्राचार्य भी थे। परंतु शुक्राचार्य हालांकि ब्राह्मण थे, परंतु सेटिस्फैक्शन का प्रिंसिपल हम उनके जीवन में नहीं देखते, कि जिस प्रकार से उन्होंने बलि महाराज को इंस्पायर किया। जो तो ये जो सेटिस्फैक्शन का जो प्रिंसिपल है, ये तीसरी जो टीचिंग इस पर आया कि इसको अनुशीलन किया जा सकता है एक आध्यात्मिक प्रोसेस को फॉलो करके, एक आध्यात्मिक निर्देशन के अंदर। इसी प्रसंग में हम देखते हैं शुरुआत में अदिति द्वारा अदिति को पयोव्रत की विधि दी गई, और उन्होंने उस विधि का इतनी अच्छी तरह से पालन किया कि भगवान स्वतः उनके सामने प्रकट हुए। तो अदिति के अंदर ऐसे कौन से गुण थे कि जिनसे भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए? अगर उस श्लोक को पढ़े, उसमें एक शब्द आता है अतन्द्रिता। अतन्द्रिता का अर्थ है बिना किसी आलस के। चिंतयन्ति, उन्होंने चिंतन किया, एकया, एकमात्र, विद वन पॉइंटेड अटेंशन, बुद्धया, अपनी इंटेलिजेंस को बिना किसी लेजीनेस के एकमात्र इस प्रोसेस को फॉलो किया, एक अग्रया, विथ फुल अटेंशन, भगवती, अंडू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड। तो किसी भी साधक को अगर आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो अदिति के गुणों से हम प्रेरित हो सकते हैं। एकया, विथ वन माइंडेड, विथ कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, She followed the process given by her husband Kashyap Muni। और साथ ही साथ जब भगवान प्रकट हुए, भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया कि भगवान ने सीधा जाकर बलि महाराज के ऊपर युद्ध बोल दिया? देवताओं की तरफ, देवता अगर युद्ध बोलते और भगवान देवताओं की तरफ होते। भगवान ने बहुत ही एक यूनिक स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने एक वामन का रूप धारण करके बलि महाराज से भिक्षा मांगी। ऐसा क्यों? वो युद्ध या आक्रमण भी तो कर सकते थे और सबको पराजित करके भी तो उनसे छीन सकते थे। उन्होंने भिक्षा ही क्यों मांगी? इसके पीछे एक बहुत पर्टिकुलर रीजन है। और ये भगवान जब प्रकट हुए, उन्होंने ये कारण अदिति माता को बताया। प्रहलाद की फैमिली में किसी को नहीं मानेंगे। एक और उन्होंने रीजन बताया, हाँ, कि उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति, प्रॉपर लिखते हैं, व्हेन अ पर्सन इज फेवर्ड बाय ब्राह्मण एंड वैष्णवस, नो वन कैन डिफीट हिम। क्योंकि उनके पास वो आशीर्वाद था। और प्रभुपाद लिखते हैं, इवन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड डज नॉट इंटरफेयर व्हेन वन इज प्रोटेक्टेड बाय अ ब्राह्मण। तो उन्होंने इस प्रकार की, कृष्ण क्योंकि टेढ़े हैं, उनके काम भी टेढ़े, सारी स्ट्रेटेजीज भी उनकी बहुत टेढ़ी होती है, तो इन्होंने, कृष्ण ने वामन का रूप लेके उनसे भिक्षा के रूप में वो छल रूप उसको मांगा। जो चौथा प्रिंसिपल या चौथी जो शिक्षा देखेंगे कि जो सत्य को हम जान सकते हैं, सत्य को जानने के अलग अलग तरीके हैं, परंतु जो परम सत्य है उसको अगर किसी को जानना है तो उसका जो तरीका है वो है महाजनो येन कथा से पंथा। क्यों बताते हैं, अगर हम इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्योंकि इंद्रियां अपूर्ण हैं, तो अपूर्ण इंद्रियों से परफेक्ट नॉलेज प्राप्त करना सिर्फ इन पर सेंस परसेप्शन पर डिपेंड कर निश्चित रूप से उनसे ज्ञान प्राप्त होता है, परंतु एब्सोल्यूट नॉलेज कंप्लीट परफेक्ट वे में प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है, बहुत मिस्टेक, क्योंकि सब इंद्रिया में जो चार डिफेक्ट्स हैं। उसके बाद बताया जाता है तर्क के माध्यम से क्या हम एब्सोल्यूट ट्रुथ को जान सकते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अपने एक लेक्चर में, जो तर्क करना ये एक क्वालिटी है जो कुछ लोगों पर भगवान द्वारा बिस्टो की जाती है। कुछ लोग तर्क करने में बहुत निपुण होते हैं और कुछ लोग हालांकि शायद सत्य से अवगत होंगे परंतु शायद तर्क कर उसको प्रस्तुत करने में इतने निपुण नहीं होंगे। तो मैं किसी चीज़ को तर्क के माध्यम से एक चीज़ स्थापित कर सकता हूँ, परंतु कोई दूसरा व्यक्ति तर्क के माध्यम से ही उसको खंडन भी कर सकता है। तो इसलिए तर्क के माध्यम से भी इस परम सत्य को नहीं जाना जा सकता। तो कैसे जाना जा सकता है, क्योंकि अलग अलग ऋषियों के अलग अलग मत हैं, मतम न भिन्नम। तो क्या इनको शास्त्रों को पढ़कर जाना जा सकता है? तो महाभारत में श्लोक आता है, इसमें कहते हैं शास्त्रों को पढ़ने के, सिर्फ शास्त्रों को पढ़ने से भी परम सत्य को नहीं जाना जा सकता। क्यों? क्योंकि शास्त्र में ही बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन आप पढ़ने वाले को मिलेंगे। शास्त्र की एक जगह एक बात कही गई है, दूसरी जगह दूसरी बात कही गई, बिल्कुल उसके ऑपोजिट, तो उनको रिकनसाइल करना वो भी पॉसिबल नहीं रहता। तो क्या तरीका है परम सत्य को जानने के लिए? महाजनो येन गता सपन्ता, जो महान ऋषियों महान भक्तों द्वारा जो पथ दिखाया गया है उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करने से इस परम सत्य को जाना जा सकता है। जो पांचवा, जो एक चीज मुझे बहुत इंस्पायर की, हालांकि हम कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, अगर हम बलि महाराज को देखें, बलि महाराज अभी जिस स्थिति में है उनको ये नहीं पता कि आगे मेरे को सारी संपत्ति वापस मिल जाएगी। अभी सोच के देखिए, अभी हम पढ़ रहे हैं कि बलि महाराज से सब छीन लिया और हमें पता है कि बलि महाराज को सब मिल भी गया, तो शायद हम इतना उनके उनके उसको इतना अप्रिशिएट नहीं कर पाते कि जिस प्रकार का रिस्क उन्होंने उठाया, जिस प्रकार के सर्कमस्टांसिस के वो थ्रू अंडरगो किए। अभी उनसे सब कुछ छीना जा चुका है, अभी वो इस बात के लिए संघर्ष कर रहे थे कि मैं अपना वचन पूरा कर सकूं, और ये कदम भी जो उन्होंने उठाया कितना बड़ा खतरे के साथ उठाया, एक तरह से अगर देखा जाए कितना बड़ा इनिशिएटिव था, और उनको पूरी तरीके से बांधा जा चुका है, उनकी पूरी भरी सभा में जिसमें वो राजा है उनको पराजित किया गया, उनके लोगों को पराजित किया गया, उनके लोगों को बर्खास्त कर दिया गया, भेजा गया अरेस्ट करके, और उनका जो सिर है जब प्रहलाद महाराज प्रकट हुए शर्म से नीचे झुका हुआ है, सिर्फ इतना, आगे उनको कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन भी बहुत हालांकि सिंपल है परंतु साथ ही बहुत एक्साइटिंग, बहुत एडवेंचरस, और इसमें शायद बहुत ही रिस्क लेने वाले कदम से भरा हुआ है। प्रतिदिन हमारे पास बहुत सारे अवसर होते हैं एक रिस्क लेने के लिए, जो जो हम महाजनों का द्वारा दिखाया गया पथ है या जो आध्यात्मिक गुरु से जो निर्देश मिला है उसको उसको पालन करने के लिए भी बहुत सारे रिस्क हो सकता है लेने सके उदाहरण के लिए, और ये रिस्क हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होंगे। किसी को अप्रोच करना पुस्तक वितरण के लिए, इट्स अ रिस्की प्रोसेस, इट रिस्की इन द सेंस वी आर बिकमिंग वल्नरेबल, हम शायद उनसे कनेक्ट नहीं करना चाहें, वी डोंट वॉन्ट टू अप्रोच, बट सिंपली टू लीव दैट कम्फर्ट जोन एंड गो आउट एंड गिव दैट बुक, इट कैन बी वेरी रिस्क टेकिंग वन। किसी के पास जाके डोनेशन मांगना, इट कैन बी रिस्की प्रोसेस, हो सकता है किसी का नेचुरल इंक्लिनेशन नहीं हो, मैं सिर्फ मांगने के लिए जा रहा हूँ। मुझे याद है जब किसी की दीक्षा होती है, दीक्षा के बाद बोला जाता है भिक्षा मांगने के लिए जाओ, लोग अक्सर मंदिर में ही मांगते हैं, परंतु अगर आप सही में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं बाहर जाकर मांगिए, मार्केट में, बिल्कुल अननोन प्लेस में, एंड देन इट विल कम आउट, यू नो नेचुरली ह्यूमिलिटी कैसे निकलेगी वो बिल्कुल अलग ही अनुभव होता है। किसी से माफ़ी मांगना, इट रिक्वायर्स एन इनिशिएटिव, इट रिक्वायर्स इन्वॉल्विंग दिस, किसी को माफ़ कर देना रिक्वायर्स, किसी हो सकता है कि मैंने किसी में विश्वास रखा हो और वो विश्वास मेरी उम्मीदों के समान शायद पूरा नहीं किया गया और मेरा विश्वास टूट गया हो, दोबारा किसी में विश्वास रखना, इट इन्वॉल्व्स टेकिंग रिस्क, एंड परहैप्स बलि महाराज के प्रसंग से इस दिशा में हम इस चीज़ के लिए भी इंस्पायर हो सकते हैं, छोटे छोटे चीज़ों को लेकर इन्वॉल्व्स इन टेकिंग रिस्क। नेक्स्ट जो मैं इस प्रसंग से जो एक चीज़ मुझे प्रेरित करती है, भगवान को देकर रिस्क लेना, जिस प्रकार से बलि महाराज ने इतना बड़ा रिस्क लिया, अपने अपने ही गुरु की अवज्ञा करके भगवान विष्णु को सब कुछ देना, और बताते हैं वैसे उनका ये जो रिस्क है इतना महान था, जब उन्होंने शुक्राचार्य की अवज्ञा की और कहा और ये प्रण लिया कि मैं वामन देव को सब कुछ दूंगा, तो बताते हैं जितने भी देवी देवता हैं आकाश में हजारों जो ड्रम्स हैं एक साथ बज उठे, सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और सारे सब ने इतनी जोर वाहवाही की कि बलि महाराज के इस स्टेप को देखकर, कि उन्होंने ये जानते हुए कि उनका सब कुछ छीन जाएगा फिर भी वामन देव को देने के लिए ये प्रण लिया है, ये स्टेप अपने आप में इतना ग्लोरीफाई करने वाला था कि देवता लोग भी इसकी प्रशंसा कर रहे थे। और बताते हैं प्रभुपाद लिखते हैं, हो सकता है कोई किसी का यश फैलता, कोई यश होता है अगर वो बहुत धनी है, परंतु भगवान ने बलि महाराज को यशस्वी बनाया उसका सारा धन छीन कर। किसी गरीब व्यक्ति को आपने देखा है धन बहुत बहुत ही पॉपुलर हो, उसका यश हो, परंतु वामन देव के इस गुण के कारण जब उनसे सब कुछ छीन लिया गया, वो आने वाले है ना पूरे समय तक श्रीमद् भागवत में उनका उल्लेख हुआ, इस प्रकार से भगवान ने उनको यश प्रदान किया। फिर है कि भगवान को देने से कोई भी व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं बनता, और विशेषकर जब कोई व्यक्ति भगवान को सब कुछ दे दे, ऐसा नहीं है कि वो गरीब बन जाता है। इसी उपलक्ष में शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर भगवान को देखा जाए, भगवान को किसी दान की आवश्यकता है क्या? भगवान को कहा गया है अखिल सार समृता, बताते हैं जब भगवान वामन देव के महल में भी जा रहे थे तो वो ऐश्वर्य से इतने पूर्ण थे कि हर कदम पर जो पृथ्वी है उसको नीचे धकेलते हुए जा रहे थे, जो भी लोक है उसको हिलाते हुए जा रहे थे, इतना ऐश्वर्य उनके पास था, फिर भी वो भिक्षा मांगने जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से कोई गंगा की पूजा करता है, गंगा से ही जल लेता है और गंगा में अर्पित करता है, या बताते हैं अगर कोई डेकोरेट करता है चंदन को डेकोरेशन, तो जिसकी रिफ्लेक्शन है ऑटोमेटिकली डेकोरेट होती है, तो उसी प्रकार से भगवान को देने से भक्त यशस्वी बनता है, भक्त का गुणगान होता है। और इसी उपलक्ष में शिला प्रभुपाद जी के एक शिष्य हिस्क्रिस भूरीजन प्रभु, वो लिखते हैं कि वो शिला प्रभुपाद को दान देते थे, अक्सर $25 का उन्होंने चेक से शुरुआत किया, उनका एक वीकली बिजनेस था, बैग बिजनेस। तो उनकी इच्छा थी, उनके हृदय में इच्छा थी कि मैं प्रभुपाद को $1,000 दान देना चाहता हूँ। तो पहले थोड़ा उन्होंने प्रयास किया कि पहले बिजनेस बढ़ेगा, उससे पैसा कमाएंगे तो वह दान देंगे। परंतु उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं। वो हर सप्ताह कुछ ना कुछ डोनेशन शिला प्रभुपाद को भेजते थे 1970 से। $25 भेजते रहे, फिर धीरे धीरे $50, $100, $200। और बताते हैं जब 1976 में शिला प्रभुपाद आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया आए, तब वो $1,000 फाइनली शिला प्रभुपाद को इकट्ठा कर डोनेट कर पाए। और फिर यही नहीं, जब 1977 में जब प्रभुपाद जुहू मंदिर से वृंदावन में गए, तब भूरीजन प्रभु को पता चला, उनको अंदर से एहसास हो गया कि मेरे जो मैं डोनेट करता हूँ शिला प्रभुपाद को, ये अवसर मेरे हाथ से जा रहा है। तो वो सब कुछ प्रभुपाद को समर्पण करना चाहते थे। तो जितनी उनकी पूंजी है उसका 50% उन्होंने डोनेट किया। और शिला प्रभुपाद पहले तो व्यक्तिगत रूप से रिप्लाई करते थे, जब शिला प्रभुपाद बीमार हो गए तो उनके सेक्रेटरी रिप्लाई करते थे। तो प्रभुपाद ने उनके पास सेक्रेटरी का लेटर आया। फिर 1977 में फाइनली उनके पास जितना भी वेल्थ था, एवरी सिंगल पेनी ही गेव इट टू सर्विस ऑफ शिला प्रभुपाद। एंड 3 डेज बाद भी प्रभुपाद का कोई पर्सनल ऐसा नहीं कि रिप्लाई आया, जस्ट उनके सेक्रेटरी ने एक्नॉलेज की डोनेशन एंड इट केम। परंतु ऐसा नहीं है, भूरीजन प्रभु लिख रहे हैं, अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं अपने बिजनेस में बहुत अच्छा कमाऊंगा, उससे बहुत जो प्रॉफिट होगा, जब एक सफिशिएंट प्रॉफिट होगा मैं तभी डोनेट करूंगा। परंतु भूरीजन प्रभु ने कहते हैं उनका ये मत नहीं है, उनका अनुभव बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा चाहे आपके पास जिस प्रकार से हम दैनिक दिनचर्या के लिए भी हम अलग अलग हिसाब रखते हैं, तो कुछ ना कुछ भाग निश्चित रूप से भगवान को सेवा में देना चाहिए। और कहते हैं कि जब मैं फाइनली डोनेट करता था वीकली, तब जाके मुझे एहसास होता था कि मैंने कुछ कंक्रीट किया है आध्यात्मिक जीवन में। तो उनका ये एक समर्पण भाव था कि फाइनली उन्होंने एवरी सिंगल पेनी ही गिव टू शिला प्रभुपाद। ये उनका समर्पण, ये उनका प्रेम था शिला प्रभुपाद से। उसके बाद एक अक्सर इन सारे तात्पर्यों में एक पॉइंट शिला प्रभुपाद बार बार हैमर कर रहे हैं कि बलि महाराज से सब कुछ छीन लिया गया, फिर भी वो भगवान की सेवा के लिए ललायित थे। तो जो शुद्ध भक्त है, सारी चुनौतियों और मुश्किलों के बावजूद भी वो भगवान की सेवा के लिए ललायित रहता है। और आखिरी कि किस प्रकार से जो ट्रुथफुलनेस है, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन का आधार है। जैसे कि परीक्षित महाराज की जब बुल से मुलाकात हुई तो एक पैर पे खड़ा हुआ था और बताया कि कलयुग में जो एक सत्यता है, बिना सत्यता के आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना बहुत ही कठिन है। सत्यता खुद से, इंटीग्रिटी, सत्यता औरों से, ईमानदारी के रूप में। और बलि महाराज इसको इतना जानते थे, उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी है वो सबका भार सह कर सकती है, परंतु एक ऐसे व्यक्ति का नहीं जो झूठा व्यक्ति है। और बहुत बार मैं इस इम्प्रेशन के अंडर था कि मैं सत्यता का पालन करता हूँ, परंतु मुझे एक मेरे को कहीं से एक एक्सरसाइज मिली कि सिर्फ ये आप ऑब्जर्व कीजिए, जो एक्सरसाइज थी कि जो भी आप बोलते हैं उन वर्ड्स को, चाहे कितना ही छोटे से छोटा, उन वर्ड्स को कितना आप रख पाते हैं, उसको ट्रूली फुलफिल कर पाते हैं। सिर्फ ये एक्सरसाइज 1 वीक के लिए ऑब्जर्व कीजिए। इवन इट कैन बी इन स्मॉल स्मॉल थिंग्स, कि मैंने किसी को कहा है कि मैं आपको 10 बजे यहाँ मिलूंगा, तो क्या आई एम हेयर, किसी को मैं आपकी ये सेवा कर दूंगा आपके साथ। इट कैन बी फ्रॉम वेरी स्मॉल थिंग्स। व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड डूइंग दिस, आई लिटरली बिकेम वेरी वेरी डिस्करेज, वेरी वेरी होपलेस, बिकॉज आई कुड सी इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग थिंग। तो स्मॉल भागों में भी इन ट्रुथफुलनेस को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अंततः तो है ही, जो हम आध्यात्मिक गुरु से के सामने जो कमिटमेंट्स लेते हैं बीइंग ट्रुथफुल, उनका पालन करना। तो ये 4 चीज़ें, ये 8 चीज़ें हमने आज डिस्कस की, भौतिक ऐश्वर्य के ऊपर लेके, सेटिस्फैक्शन को लेकर, आध्यात्मिक जीवन में किस प्रकार उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, अदिति महाराज के, अदिति के उदाहरण से देखा, सत्यता, चैरिटी, रिस्क, अनइंटरप्टेड सर्विस और फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। तो मैं यहीं पर विराम दूंगा, किसी का कोई टिप्पणी या प्रश्न हो। थैंक यू। आपका क्वेश्चन है? दिस आई विल कम बैक टू यू।
ढंग से सत्यता पालन नहीं कर पा रहे, इससे क्या रियलाइज, क्या अनुभव हुआ आपको?
एटलीस्ट पहले इस बात से अवेयर होना कि मेरे अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आई ओपनर था।
तो हिंदी में बोलिए।
ये इस चीज़ से अवगत होना कि मेरे अंदर ये कमी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साक्षात्कार था। तो एक तरह से हालांकि मैं डिस्करेज हुआ, परंतु सत्य से अनुभव होना एक तरह से बहुत हिम्मत भी देता है, वो एक तरह से प्रगति था। पहला स्टेप यही होगा कि कॉन्शियस रहना कि मेरे अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, उसके बाद उस चीज़ का अभ्यास करना।
तो प्रभु जी, इसमें अगर आपको कोई बड़ी बड़ी सेवा करनी है तो आप एकदम इसी बात को फोकस करो कि मैं पूरा 10 बजे पहुँचना, 10 बजे पहुँचना है, तो कुछ काम से किस
अगर तो कोई ये इस चीज़ को कमिट नहीं करता, कोई भी सेवा कैसे भी हो, उसका वो कोई सेवा हो ही नहीं सकती। जहाँ पे ट्रस्ट नहीं है, जहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम एक तरह से कोलैप्स कर जाएगा। अगर जो आपने बोला है, अगर आप उस पर अडिग नहीं हैं, मेरा अनुभव तो ये है, अगर हम जो बोलते हैं उस पर अडिग नहीं हैं, तो हम प्रगति नहीं कर सकते। बिमला प्रसाद जी, आपका क्वेश्चन कमेंट।
मेरा कमेंट है इसी, अब जहाँ से बात शुरू हुई थी मटेरियल ऑपुलेंस पे, और मेरा मतलब इस तरीके मेरा जो दृष्टिकोण है इसके अंदर, आई फाइंड दिस आइडिया दैट मटेरियल ऑपुलेंस इज डेंजरस इज लाइक इन फाइंडिंग स्केप गोट एंड विपिंग बॉय। बिकॉज मैं ये इसलिए क्योंकि इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे होता है कि जैसे हम क्योंकि एक बलि का बकरा ढूंढ रहे हैं, वो कौन है, वो है मटेरियल ओपिलियंस, और इससे हम अपने सारे उससे जिम्मेदारी से बरी हो जाते हैं कि अब मेरे ऊपर कोई इसका लांछन नहीं लगेगा कि मेरी यहाँ पर कोई फॉल्ट है, मेरी कोताही है, मेरी कमजोरी है, रदर देन क्योंकि मटेरियल ओपिलियंस है ही ख़राब, तो जितनी भी बुराई हैं सारी मटेरियल ओपिलियंस की वजह से, एंड उससे मैं अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाता हूँ। इससे मैं समझता हूँ कि आदमी भगोड़ा और कामचोर बनते हैं, क्योंकि उसको कोई जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है इसमें अपने लिए, अपने ऊपर।
थैंक यू प्रोजी फॉर अ कमेंट।
हरे कृष्णा प्रोजी, चैरिटी में आपने बताया कि हमें व्यक्ति को दान देना चाहिए, लेकिन जब भी हम ऐसा सोचते हैं कि हम दान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंश अहंकार की भावना उसमें रह जाती है कि हमने दिया। तो इसको अगर हम इस तरह से अगर प्रैक्टिस करें कि हम जो भी दे रहे हो तो हमारा कभी था ही नहीं। एक उदाहरण के लिए, जैसे गधे की पीठ पर नमक का बोरा ला दिया गया और वो जब एक नदी से निकल रहा है तो वो अपने आप भूल करके ख़त्म हो जाता है। तो इस भौतिक संसार में भी एक अमीर व्यक्ति की वही स्थिति है कि वो जो भी उसके ऊपर में ओपलेंसेज हैं वो लाद दिए गए, और कभी वो अपने भौतिकता में लगे लगे उनको खो भी देता है, और अगर वही सही व्यक्ति के पास में, मालिक के पास में उसको पहुंचा देता है तो अपना कर्म पूरा कर रहा है। बेसिकली धन उसका कभी था ही नहीं। तो हम अगर इस तरह से समझे कि हम जो दान दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, हमारा था नहीं, हम तो एक सेवा का कार्य सौंपा गया था, उसमें हमने पूरा कर दिया, और अगर ऐसा नहीं सोचते हैं तो हम भौतिक संसार में उसको हानि कर बैठते हैं।
आप प्रूफ कर रहे हैं जो प्रोजी ने कमेंट किया। ऑपुलेंस का एक पर्पस है, एक यूटिलाइजेशन है। जैसे कि प्रभु जी का भी कमेंट था कि हम एक किसी पर जिम्मेदारी डाल देते हैं, परंतु यहाँ पर जो अगर आप श्लोक देखेंगे या जो मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया, ओनस is on me. I am considering it to be mine and for my enjoyment. Material opulence अपने आप में खराब नहीं है. Opulence का एक purpose है, उसको भगवान की सेवा में लगाना. और अगर किसी को अहंकार आता भी है दान करने से, तो recommend ये है कि आप दान देते रहिए. इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि दान करना यज्ञ दान तपस्या सबके लिए ये एक धर्म है. ऐसा नहीं, ये कोई ऑप्शनल नहीं है कि जब मेरे पास ज़्यादा होगा तो मैं दान दूंगा. ये हर वर्ण हर आश्रम के लिए किसी ना किसी रूप में दान देना ये एग्जिस्ट करता है. तो जो धर्म को पालन करके ही शायद हम प्योरीफाई होंगे, मुझे ऐसा लगता है. बट थैंक यू आपके विचारों का. लास्ट क्वेश्चन
हरिकृष्ण प्रभु जी.
प्रभु जी, आपने बताया कि हमें अपने वर्ड्स पे ट्रूथफुल होना चाहिए और अपनी वर्डिंग्स पे रहना चाहिए, पर वो प्रोसेस क्या है जिसके थ्रू हम अपने लिए ही ऑनेस्ट हो सकते हैं?
इनफैक्ट जिस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप अपने वर्ड्स को वैल्यू करते हैं, दूसरे लोग भी आपके वर्ड्स को उतनी ही मात्रा में वैल्यू करेंगे. अगर आपने अपने आप से कहा कि कल मुझे सुबह 5 बजे उठना है, और ये मैंने अपने आप से शब्द कहे, और मैं इन वर्ड्स को, मैं खुद अपने शब्दों को वैल्यू करते हूँ, तो आप देखेंगे तो जो भी आप बोलेंगे सामने वाला व्यक्ति भी उसका वैल्यू कदर रिस्पेक्ट करेगा. तो जो प्रोसेस वो यही है कि एटलीस्ट बहुत कॉन्शियस रहें कि मेरे मुँह से क्या शब्द निकल रहे हैं, और जब तक मैं श्योर नहीं हूँ तब तक किसी से कुछ कमिट ना करें, और अगर किसी को आपने शब्द दिए हैं तो उसको पूरा करें.
तो जो डिटर्मिनेशन है हमारे अंदर, वेल डिटर्मिंड होके ही हम ऐसा कर सकते हैं, तो वो चीज़ हमेशा स्थिर कैसे रख सकते हैं अपने अंदर?
डिटर्मिनेशन हर एक के पास होती है, इसको सिर्फ एक्सरसाइज करना होता है. अब जैसे मसल्स हैं, अब हर एक के पास मसल्स हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करके उसको आप बिल्डअप कर सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास डिटर्मिनेशन नहीं है, वो भक्त बहुत डिटर्मिंड है, उसने क्योंकि प्रैक्टिस की है. इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. आप प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस हैपन्स इन द प्रेजेंट टेंस. इट डजेंट हैपन इन फ्यूचर, इट डजेंट हैपन इन पास्ट. राइट इन दिस मोमेंट इफ आई कैन प्रैक्टिस फॉर टुडे, वन स्टेप एट अ टाइम.